ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله معنى كل غنيمة وفضل كاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على أواتف كرمه وثواب جنعمه. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعزيز فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد في سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حاضرین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزلہ اور زکام کے لیے، سب سے پہلے نزلہ کے لیے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں سینگ ہے ان ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، وہ کہہ رہا ہے ا لیمن ان اے ڈے کتنا شہد ڈالے کہ جتنا انسان کو میٹھا چاہیے. یہ بھی بہت فائدہ ہے نزلہ والے لوگوں کے لیے، یہ تو عام تھوڑا تھوڑا نزلہ اس کے لیے بھی ہے. ایک چمچہ ادرک کا رس تو آدھا آدھا چمچہ شہد اس کو ملا کے لینا ہے. پھر کھانسی کے لیے، ہاں یہ بھی ہے نزلہ کے لیے. دوسری بات بتا رہا ہے، ایک چمچ چائے کی چمچ شہد میں دو چمچ ادرک کا رس، تقریباً قریب قریب چیزیں ہیں. اگر اس میں پہلے میں نے بتایا تھا، بس مجھے لگتا ہے وہی میں ابھی جو بتایا ڈبل، اگر ایک چمچ شہد لیا تو دو چمچ ادرک کا رس، اگر ایک چمچہ لیا ادرک کا رس تو آدھا چمچہ شہد، صرف فرق بتا چیز وہی ہے. اوکے، کھانسی کے لیے بتا رہا ہے کہ پیاز، پیاز کا رس اور شہد، اسے دو طریقے سے کھایا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو لینا لے سکتے ہیں. پیاز کا رس نکال کے شہد کو ملانا ہے، اس میں ناپ نہیں لکھا ہے. پیاز کا رس نکال کے کھانسی کے لیے شہد کے ساتھ ملانا ہے، مگر نہار منہ، نہار منہ اس کو کھانا ہے، پینا ہے. یا پیاز کو دو حصہ کر کے، ان کا جو کھلا حصہ ہے اس کو ایک پیالے میں اس طرح رکھنا ہے کہ شہد میں ڈبونا ہے، اتنا شہد ڈالے کہ وہ پیاز ڈوب جائے شہد میں. صبح نہار منہ، اس میں رات کو کریں گے ہم، اس میں سے پانی نکلے گا پیاز سے، وہ شہد سے مکس ہو جائے گا. تو صبح نہار منہ اس کو تین چمچ لینا ہے، چائے کی چمچ تین چمچ. یہ بہت فائدہ مند ہے، جس کو بہت پرانی کھانسی ہو، بہت کھانسی تنگ کرتی ہو، ان کے لیے جو رات کو شہد میں بھگانا ہے آدھا حصہ کر کے، تاکہ وہ کھلا حصہ ڈبو کے رہے، اس میں سے پانی نکلے گا، وہ شہد کے ساتھ مکس ہوگا. صبح نہار منہ تین چمچ، پہلے میں ناپ نہیں دیا کہ پیاز کا رس اور شہد کو ملا کے نہار منہ لینا ہے، اس میں تین چمچ بتایا ہے کھانسی کے لیے. کھانسی کے لیے اور گلے کو صاف کرنے کے لیے، کیسے مجمع میں مجلس میں کہاں گئے کھانسی تنگ کر رہی ہے، تو فرماتا ہے کہ انار کا چھلکا ہے ان کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے تو اس کے ذریعے جو رس نکلتا جائے گا تو گلے میں راحت ملے گی. تو انار کے چھلکے کا ٹکڑا منہ میں رکھنا ہے. پھر کہتا ہے کہ موک لینا، دعا لینا، کس کا؟ पानी उबल जाए, बॉइलिंग वाटर, पानी उबलने के बाद चंद टुकड़े लहसुन के, चंद टुकड़े लहसुन के उस उबाले हुए पानी में डालना है, बॉइलिंग वाटर में उसका धुआं लेना है, मौक उसका धुआं लेना है, नजला और खांसी वाले के लिए, दोनों के लिए बहुत फायदा है कि पानी को उबालने के बाद उसमें चंद टुकड़े लहसुन का डाल के इनहेल करना है, वेपर्स को इनहेल करना है। अब ब्रोंकाइटिस हो इतना ज्यादा कि ब्रोंकाइटिस तक पहुंच जाए तो उसके लिए बताता है कि दिन में चार मरतबा 5 ग्राम शहद लेना है, दिन में चार मरतबा, हर मरतबा 5 ग्राम शहद, हनी दिन में चार मरतबा 5 ग्राम हनी लेना है दिन में। ये भी ये तो बहुत फायदेमंद है बलगम को खत्म करना, बलगम खांसी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, क्योंकि बलगम अगर इंसान के पास बलगम होता है तो हाफेजा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान देता है बलगम हाफेजा के लिए। तो खजूर की चंद पेश, चंद खजूर की पेश खाने के बाद 5 घूंट 5-6 गर्म पानी, जितना गर्म पानी बर्दाश्त कर सके इतना गर्म पानी, चंद पेश खजूर की खाने के बाद फौरन 5 घूंट पानी, 5 सिप्स पानी का गर्म पानी, जितना बर्दाश्त कर सके इतना फौरन पीना है। तो बलगम का साफ करके नजला, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, खांसी सबके लिए बेस्ट है। आखिरी चीज ब्रोंकाइटिस के लिए बता रहा है कि दूध में हल्दी, दूध में हल्दी, थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल के उबालना है, दूध में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, गुड़, तीन चीज को डाल के दूध को उबाल के फिर गर्म दूध पीना है जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। आखिरी चीज आज बताऊंगी, जिसको माहवारी का प्रॉब्लम हो या माहवारी सही तौर पे नहीं आता हो, इस्तिहाजा का प्रॉब्लम हो, 10 दिन के अंदर ना आए बल्कि रुक रुक के आए या 10 दिन के बाद मजीद आए, या मासिक के दौरान, हैज के दौरान बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो दो लोगों के लिए, एक जिसको हैज आने से पहले जो बहुत दर्द होते हो पीरियोडिक पेंस, या जिनको हैज खुल के नहीं आता हो, सही तौर पे नहीं आता हो, दोनों के लिए है कि तिल खाना, तिल चाहे काला हो चाहे सफेद हो, तिल को ऐसा ही खाना, जब भी खाना खाते रहे वक्फे दर वक्फे, तिल का खाना ये सिस्टम को सही कर देगा। ये चीज, दूसरी चीज जो बताई बहुत बहुत फायदामंद है कि अब इसमें है कि एक तोला काला तिल, इसमें काला है, पहले में काला या सफेद तिल खाने से वो पीरियोडिक पेंस भी, दर्द भी दूर होगा, पीरियड से पीरियड के क्या और पीरियड भी सही आएगा, मगर ये बहुत ज्यादा फायदामंद है। दूसरा वाला है एक तोला काला तिल और 20 तोला पानी में उबालना है, 20 तोला पानी और एक तोला काली तिल को उबालना, इतने हद तक उबालना है कि 5 तोला पानी बच जाए, इतना उबालना है कि 5 तोला पानी बच जाए, फिर उसमें गुड़ मिलाना है, 5 तोला रह गया हमने ऑफ कर दिया स्विच, 5 तोला बचा हमने ऑफ कर दिया, उसके बाद थोड़ा इतना गुड़ डालना है कि जितना इंसान को मीठा खा सकते हैं, जितना उनको मीठा चाहिए इतना गुड़ डाल के फिर इस पानी को पीना है, 5 तोला बच जाए उसको ऑफ कर दो, उसमें गुड़ डालो इतना गर्म कि जितना बर्दाश्त कर सके, तो ये बहुत फायदामंद है। और क्योंकि कुछ ऐसे वाजिबात के सवाल भी आए हैं और ये रोजमर्रा जिंदगी का सवाल है, इसलिए मीराज के मसाइल का जवाब देने से पहले बस एक ही इस्तिहाजा का सवाल का जवाब दे दूं। ये औरत का सवाल है कि ये मुस्तरीबा है, ये मुस्तरीबा है जिनका न अदद है न वक्त का है, कोई ठिकाना नहीं, इन्होंने वक्त की पाबंदी भी नहीं है और अदद की भी नहीं, अदद दर्द के अंदर है तो मसला नहीं, क्योंकि हैज की निशानियां भी है, खून हैज की निशानियां भी है और 10 दिन के अंदर भी है, तो تو مسئلہ نہیں ہے, بس اس کا سوال یہ نہیں ہے اس کو دس دن سے زیادہ خون بہ رہا ہے, دس دن سے خون زیادہ جا رہا ہے, اور ہے بھی مضطربہ, نہ ان کا نمبر فکس ہے دین, نہ ان کا ٹائم فکس ہے, دونوں میں نہیں ہے. وہ عورت کیا کرے؟ پہلے وہ دیکھے کہ دس دن سے زیادہ تو خون چل رہا ہے, مگر ان میں نشانیاں کس میں ہے, اس کی نشانیاں سب سے پہلے حیض کی نشانیاں کو تلاش کرے, جہاں حیض کی نشانیاں نظر آئے اس کو حیض جانے. مگر ان کے سوال کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے خون ایک ہی قسم کا ہے, سارے خون میں سب میں حیض کی نشانیاں آئے. حیض کی نشانیاں چند دنوں میں ہو تو وہ تو سمجھ میں آ جائے کہ حیض ہے, باقی کا اشتہاد آئے کیونکہ دس دن سے زیادہ ہے. مگر نہیں, سارے خون ایک ہی قسم کا ہے, ایک ہی علامت کے ساتھ آ رہا ہے, سارے حیض کی علامت کے ساتھ. ان کے پاس عدد نہیں ہے, انہوں نے کہا آیت اللہ سیستانی کے مطابق جواب دینا. آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ رشتہ دار عورتوں کو دیکھا جائے گا, ہم عمر ہو بڑی عمر کی نہیں دیکھیں گے, ان کے کزنس وغیرہ ہو, خاندان کی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے, تو خاندان کی عورتوں سے اپنے دین وغیرہ معین کریں. اس سے ممکن نہیں ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے تین سے دس تک جو دین چاہے ان کو حیض قرار دے, باقی کا اشتہار تھا. مگر بہتر ہے کہ سات دن, سارے مراجع نے سات دن پہ بہت زور دیا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ جن کا سارے نشانے ایک ساتھ ہے, خاندان کی لڑکیوں کے ذریعے بھی باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں, تو سات دن کو حیض قرار دے, باقی کے دنوں کو استحاضہ قرار دے. مگر آیت اللہ خوئی اس نے پوچھا نہیں, مگر مجمع مگر کوئی ہو خوئی میں خوئی صاحب کا, تو آیت اللہ خوئی فرماتے چھ یا سات دن. وہ ان رشتے دار کے لیے طرف جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بتا رہے, سیدھا سادہ جو مستریبہ ہے تو وہ ان کے دن چھ دس دن سے زیادہ چل رہا ہے, سارے خون کی نشانی ایک قسم کی ہے, تو چھ یا سات دن. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کو رشتے دار عورتوں کو دیکھیں, پہلے رشتے دار عورتوں کو دیکھیں, اگر ان میں سات دن ہے تو سات دن قرار دیں, اگر ان لوگوں میں پانچ دن ہے تو پانچ دن تو قرار دیں, مگر مزید دو دن احتیاط کریں. سمجھتا ہے مجمع میرے سامنے علم رکھتا ہے, احتیاط منا مطلب جو چیز حیض میں حرام ہے ان کو حرام جانے, اور استحاضہ کا احکام بھی کرے, نماز روزہ بھی کرے, اگر ماہ رمضان ہے روزے کی قضا بھی دے, احتیاط کرے. اگر خاندان میں نو دن ہے تو سات دن حیض کو قرار دے, وہ پچھلے دو دن میں احتیاط کرے. سات دن میں زور تو دے رہے ہیں, مگر رشتے دار کی عورتوں کو دیکھو کہ سات دن ہے تو سات دن قرار دو, پانچ ہے تو پانچ دن حیض قرار دو, مگر دو دن احتیاط کرنا پڑے گا تاکہ سات تک نمبر پہنچے. نو دن ہے یعنی سات سے زیادہ ہے تب سات دن حیض قرار دو, تو مزید ایک دو دن ہے ان میں احتیاط کرو. تین مراجع کا میں نے بتایا کہ شاید اس نے صرف سستانی کا پوچھا, مگر اگر کسی کو ضرورت پیش آئے. اب میراج کی دو تین مسائل جلدی سے کر کے جو آپ کی طرف سے سوال آئے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ پہلے طبقے میں والدین اور اولاد ہیں, اور اولاد نہیں اور اولاد کی اولاد, اگر اولاد ہے تو اولاد کی اولاد کو کبھی نہیں ملے گا. اگر ایک اولاد بھی زندہ ہے جو بیٹا حیاتی میں مر گیا, ان کو کچھ, وہ تو مر گیا, ان کے بچے کو نہیں ملے گا, وہ تو پوتے کو نہیں ملے گا, اگر ایک بھی پہلے طبقے کی اولاد موجود ہے, بیٹا یا بیٹی, ایک بیٹا یا بیٹی موجود ہے یا ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے, تو پھر پوتے پوتوں پوتیوں کی نواسے نواسیوں کی باری نہیں آتی. یہ ان صورت میں پوتے پوتیوں کی باری آتی ہے اگر ایک ہی بیٹا تھا مر گیا, ان کے بچے اور کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی پہلے طبقے میں نہ والدین ہے نہ کوئی اولاد ہے, بلکہ اولاد مر گیا ماں باپ کی زندگی میں, ان کا بچہ تھا تو ان کو ملے گا, ورنہ پوتے پوتی کو کبھی نہیں ملے گا. اگر ایک بھی اولاد بیٹا یا بیٹی موجود ہے تو ان کی باری کبھی نہیں آئے گی. مگر اگر یہ پہلے طبقے میں بس اتنے ہیں اولاد اور والدین, اور اگر اولاد نہیں ہے تو ان کی اولاد, تو کبھی اولاد ہی نہیں ہوتی تو اولاد کی تو بات ہی نہیں. अब दूसरे तबके में दादा दादी नाना नानी भाई बहन, भाई बहन न हो तो उनकी औलाद, भाई बहन एक भी मौजूद है तो उनकी औलाद की बारी नहीं आएगी। तो दादा दादी नाना नानी तकरीबन ऐसा होता है कि जब वालिदैन नहीं बचते तो इसका सवाल यह है कि मियां बीबी है उनको औलाद नहीं हुई और दोनों के वालिदैन भी मर गए हैं, शौहर के वालिदैन भी मर गए हैं, बीबी के वालिदैन भी मर गए हैं। अब भाई बहन है, अब भाई बहन को मेरा जब वालिदैन नहीं रहा तो दादा दादी नाना नानी भी नहीं है, मैं ये समझ रही हूं। तो दादा दादी नाना नानी भी जिंदा नहीं है तो अब बीवी और शौहर को बच्चे नहीं हुए हैं। तो अब शौहर मर गया, 90,000 छोड़ के मरा तो 30,000 की वसीयत अनुसार जो वसीयत उसने की उसके मुताबिक होगा। 60,000 जो बच गए क्योंकि औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, 15,000 मिलेगा। अब 45,000 जो बच गए भाई को दो हिस्सा, बहन को एक हिस्सा। अगर फर्ज करें कि एक भाई है दो बहने हैं, एक भाई और दो बहने, भाई का दो हिस्सा बहन का एक एक, तो चार हिस्सा, 45,000 का चार हिस्सा होगा। भाई को दो हिस्सा मिलेगा, बहन को एक एक। दो भाई एक बहने, मिसाल दो भाई एक बहन, दो भाई का दूसरे भाई का दो बहन का एक, तो पांच हिस्से होंगे। 45,000 के पांच हिस्से करो तो 9,000 होते हैं। तो 9,000 एक बहन को और एक भाई को, 18,000 दूसरे भाई को, 18,000। तो बीवी का तो वही रहेगा चौथा हिस्सा क्योंकि औलाद नहीं है, औलाद होते तो आठवां हिस्सा, मगर उनका चौथा हिस्सा क्योंकि औलाद नहीं। इसी तरह अगर शौहर पहले मरा तो ये बीवी को मिला, अगर बीवी पहले मर गई तो बीवी मर गई तो उन शौहर को उनकी जायदाद में से आधी मिलेगी। 45,000 है फर्ज करें कि, सॉरी 60,000 है, 30,000 वसीयत, 60,000 है तो 60,000 का 30,000 आधा शौहर को मिलेगा बीबी की जायदाद में से, मिल्कियत में से। शौहर को 30,000 मिल गया तो 30,000 जो बच्चे हैं तो क्योंकि अभी बीवी की भाई बहन, उस वक्त आदमी मरा था तो उनके भाई बहन, मर्द का भाई बहन, जैद का भाई बहन, क्योंकि खून के रिश्ते के साथ मीरास है। अब फातिमा पहले मर गई तो शौहर को 30,000 मिल गया, बाकी 30,000 जो बच्चे हैं, अगर एक बहन है और दो भाई हैं तो पांच हिस्से होंगे, तो पांच हिस्से 30,000 का, 6,000 बहन को मिलेगा, 12,000 एक भाई को, 12,000 दूसरे भाई को, 30 के पांच से डिवीजन करेंगे तो 6,000 बनते हैं। तो इसी तरह अपने अपने भाई बहन को और मियां बीबी एक दूसरे से उनका हक बनता है। अब ये एक सवाल खत्म हुआ। दूसरा सवाल ये है, एक औरत सवाल पूछ रही है कि उनके पास एक फ्लैट है और उनके नाम पे है, उनके नाम पे है, मतलब में नाम इंपॉर्टेंट नहीं है शरीयत में, मालिक है कि सिर्फ उनके नाम पे रखा गया है। कभी होता है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए वगैरह नाम पे रखा जाता है तो उनकी मिल्कियत नहीं मानी जाएगी, बाकायदा उनका है, उनकी मिल्कियत है तो बिल्कुल सही। तो मैं ये समझ के जवाब देती हूँ कि नाम का मतलब उसकी मिल्कियत है, उस औरत की मिल्कियत है। उनका शौहर भी जिंदा है, बेटे के साथ रह रही, एक बेटा है, चार बेटियां हैं मिसाल। अब ये तकसीम कैसे होगा? अब फ्लैट है ना, औरत का खुद का फ्लैट है, जब वो मर जाएंगी तो क्योंकि उनके वरसा में माँ बाप कोई नहीं है, उनका औरत जिसका फ्लैट है उसका माँ बाप नहीं है, शौहर है, एक बेटा है, चार बेटियां हैं, तो क्योंकि औलाद है तो शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा फ्लैट का, उस फ्लैट का जो चौथा हिस्सा है वो शौहर को मिलेगा। अब जो बच्चा यानी औरत का शौहर को जो बच्चा, उनके छह हिस्से होंगे, छह हिस्से, क्यों? बेटे को दो हिस्सा मिलेगा, चार बेटियों को एक एक हिस्सा। इस फ्लैट का जो अभी शौहर को चौथा हिस्सा मिलने के बाद जो बचत है, बेटी को एक एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्सा, तो इनके छह हिस्से होंगे। लगता है उनको समझ में आ गया होगा। आखिरी सवाल आपके जानिब से मीराश का, एक औरत कह रही कि जैद नाम, उसने भी मिसाल जैद का लिया, अच्छा है, जैद मरा, उसने कुछ जानवर छोड़ा, एक खाली जमीन छोड़ी जहां उस पर घर बनाया जाए, मगर जमीन खाली पड़ी थी। जब जैद मरा तो खाली जमीन और जानवर छोड़ के और दुकान छोड़ी थी। इसके तीन बच्चे हैं और एक बेवा है, उसकी एक मां भी है, जईफ मां, बाप नहीं है, मां है, तो मां को छठा हिस्सा मिलेगा जमीन में से भी, मकान अगर उसने दुकान छोड़ा है तो दुकान में से, जमीन में से, हर चीज में से। जैद मरा है तो उनका तीन बच्चे है, पता नहीं कैसा का बेटा है उसमें, तीन बच्चों में बेटा, तो जैद के सारे कपड़े, पहने हुए कपड़े, तलवार अगर है, कुरान और अंगूठी जो अक्सर पहनता था, वो बेटे को मिलेगा जो तीन बच्चों में से अगर बेटा है। उन्होंने तीन बच्चे लिखे, नहीं लिखा है बेटा बेटी के से, वो चार चीज उनको मिलेंगी। अब जो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाह, अब बेवा है, बेवा को क्योंकि औलाद है तो आठवां हिस्सा मिलेगा, मगर जमीन में से कुछ ना मिलेगा, आठवें हिस्से की कीमत मिलेगी मगर उनको जमीन में से कुछ ना मिलेगा। और अगर बच्चे नाबालिग थे जब बाप मर गया तो उनके कपड़े हिफाजत से रखना पड़ता है, या बालिग हो के तकसीम हो जो उनकी मर्जी, या तो हाकिम शरा या उनका वकील को, क्योंकि दादा भी नहीं है ना, बाप तो मर गया, तो किसी मुश्तहिद के को मिले या मुश्तहिद के वकील से मुलाकात करके ये बात तय करे। और ये फौरन ये काम पे अमल करना होता है, फौरन वाजिब है, जिसके जो जो हुकूक है उनको दे दे। हाँ, अगर सब बालिग है, सब वरसा बालिग है तो सब मुसालिहत कर सकते हैं, मगर इसमें से एक नाबालिग है तो उनका हर हिस्सा को अलग किया जाएगा, जितना उनका हिस्सा हो, जानवर में, खाली जमीन में, जो उनका हिस्सा है उनको अलग, दुकान है तो नाबालिग का तो हिस्सा अलग किया जाएगा, उसको कोई मस नहीं कर सकता। उनका सवाल है कि सालों गुजर गया, उसको उससे घर भी बनाया गया है जमीन पे, तो ये कैसे हुआ है? ये तो नहीं हो सकता। अगर फर्ज करे बच्चे के चचा ने, बच्चे के चचा ने घर बनाया ऊपर, उसमें सब रह रहे हैं, तो बच्चे अगर बालिग थे, माँ भी मौजूद है, बीवी भी है, सब वरसा राजी है और सब बालिग है, वो सब राजी है तो सही सीखे कि मकान बनाया गया उसमें सब रह सकते हैं। मगर इतने अरसे तो गुना ही गुना रहा, नमाज कबूल नहीं हुई, ना नमाज कबूल हुई, गुनाह ने अजीम, गुनाह ने कबीरा हुआ कि विरसे को तकसीम किए बगैर, बाली गुरसा की इजाजत बगैर मकान को बना लिया चचा लोग, उसमें रह रहे हैं, इतना अजीम गुनाह है, ना नमाज कबूल। अब तो बच्चे सब बालिग हो गए हैं, माँ है, सबसे माफी मांगे ये हुआ, मगर नमाज तो दोहराना पड़ेगा जितने अरसे तक अगर नाबालिग था, कजा देनी पड़ेगी सारी नमाज जो अगर नाबालिग थे उसमें, और बालिग थे तो मगर इजाजत कुछ नहीं ली, मसाइल किसी को नहीं पता था, तो बहुत सीरियस मसला पूछा गया है, बहुत बहुत डरावना सवाल पूछा गया है। तो बस एहतियात, मसाइल जानना कितना जरूरी है, कितने साल से गुजर जाए, न तकसीम हुआ हो, मजीद मकान बनाया गया और लोगों को हक नहीं मिला है, हकूक मिक्स हो गए, बेटे का दो हक, बेटी का एक हक, माँ का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, सब मिक्स हो गए और चलते रहे। तो बस मैंने शॉर्ट में समझाया है, मेरी राय यही है किसी आलिम से मुलाकात करें। आप तो खुशकिस्मत है, शेख अली रजा महदवी तो सोल्जर रजा में है, उससे अपॉइंटमेंट लेके ये बातें पूछे, आपको तकसीम कर देगा, बताएगा, वकील भी है, आलिम भी है, आप तो खुशकिस्मत हो, आपकी एरिया में है, तो आप फौरन राबेता कायम करो, आपकी मदद करेगा, क्योंकि मिंबर से इतना टाइम नहीं होता कि सारी बातें को उससे ज्यादा तफसील से बताई जाए। अब हम सारे जामिया की तरफ जाएंगे, और आज थोड़ी जैसे जामिया और नमाज से गुफ्तगु की करनी है, क्योंकि आपके जानिब से ही ख्वाहिश आई है, आप लोग ख्वाहिश करते हो कि ये पढ़ो ये पढ़ो, तो कभी हमारी टॉपिक को बिल्कुल नुकसान पहुंचता है और सूरा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और क्योंकि आपकी ख्वाहिश है और बहुत अहम ख्वाहिश की गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस ख्वाहिश पे अमल करूं। मगर प्लीज हो सके तो आप मुसलसिल ख्वाहिश बयान न करें, ताकि जो मौजू हम मेंटली प्रिपेयर करके आए हैं वो मौजू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुसलसिल कुछ न कुछ चीजें डालती हूँ, समझ लेना कुछ ख्वाहिश होती है, शायद टॉपिक में न भी हो मगर आप लोगों ने ख्वाहिश की है। तो आज मैं सूरह हुजुरात को छोड़ के आपकी ख्वाहिश को ज़ियारत जामिया के जरिए पूरी करूंगी, क्योंकि उसमें आपकी ख्वाहिश सूट हो रही है, सूरह हुजुरात में मेरी सूट नहीं हो रही है। तो अब ज़ियारत जामिया के कुछ आगे कदम हम बढ़ाए, इतनी बड़ी ज़ियारत में से कुछ जुमले आज मैं उठाना चाहती हूं, ताकि हम हमारे मासूमों हमारे इमामों की मारिफत हासिल करें, किस तरीके से ज़ियारत जामिया के जरिए क्या पैगाम है, उनकी फजीलत क्या है। तो तीन जुमला आज मैंने चुना है। पहला जुमला है, हम सलाम करते इमाम को, महालिल मारिफतिल्लाह, महालिल महाल उसको कहते जगह, वो मकामात, यानी हमारे इमाम वो मकामात है, वो जगह है, वो मीडिया है जिसके जरिए मारिफत इलाही हासिल की जाती है, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान इमाम के जरिए है, महालिल मारिफत, मारिफत इलाही। अब दूसरा जुमला है, तामीन फी मोहब्बतिल्लाह, तामीन हद कमाल मोहब्बत खुदा की, हद कमाल तक से मोहब्बत खुदा की, तामीन ताम फी मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बतिल्लाह, वल मुखलिसीन फी तौहीद तौहीदिल्लाह, अल्लाह की तौहीद में मुखलिस, अगेन हद कमाल तौहीद में, तौहीद के एतकाद में मुखलिस। ये तीन जुमलों पे आज गौर करना है हमें हमारे मासूमीन के हवाले। अल्लाह की मारिफत होती है इमाम के जरिए, इमाम के जरिए नबी की मारिफत, नबी के जरिए अल्लाह की मारिफत, रबी और अहले बैत के जरिए अल्लाह की मारिफत। अब समझ में आता है, समझ में आती है ना हदीस, रसूल ने कहा मन मात वलम यारिफ इमाम जमानी मा तमैतिल जाहिलिया, जो मर गया अपने इमाम को पहचाने के बगैर जाहिलियत की मौत मरा, जाहिलियत की मौत मरा, क्योंकि इमाम को नहीं पहचाना तो अल्लाह को नहीं पहचान सके। तो मारिफत खुदा इमाम के जरिए है, ज़ियारत जामिया गवाही दे रही है। जब हम दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका फइन लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम अरिफ रसूलका, अल्लाह तू मारिफत अता कर, तेरी तेरी मारिफत, अगर तेरी मारिफत अता न की तो हम रसूल को नहीं पहचाने, रसूल की मारिफत न हुई तो हुज्जत को नहीं पहचानेंगे, हुज्जत की मारिफत न हुई तो दलल तो अन दीनी, दीन में गुमराह हो जाएंगे, दीन में हम गुमराह हो जाएंगे। अब पता चलता है कि देखो ये सारी दुआ हदीस रसूल ज़ियारत जामिया बता रही है कि वो है महाल, वो जगह, वो मकामात है कि जिसके जरिए अल्लाह को पहचाना जाता है। कितना अहम बात है। तो हम देखें, एक मिसाल दे, मिसाल दे, चलो मौलाली की मिसाल, मिसाल तो भरपूर है। जब 19 रमजान को हमारे मौला को जिबने मुलजिम ने जो वार किया, सबको मैं पता है कि कैसे तलवार को जहर में बुझाया गया था और कैसा वार किया, कि खुद इब्ने मुलजिम का जुमला का एक कतरा समंदर में इस जहर का डाला जाए तो समंदर की सारी मखलूक उसी वक्त मर जाती। तो मौला ऐसी वार में तड़प रहे हैं, जख्म से भी तड़प रहे हैं, जहर से भी तड़प रहे हैं, मगर उस वक्त किसकी फिक्र कर रहे हैं, मलून की फिक्र कर रहे हैं, उनकी फिक्र कर रहे कि उनकी रस्सी ढीली करो, उनको शरबत दो, उनकी रस्सी ढीली करो। कितना रहीम करीम इमाम है, कितना नरम दिल इमाम का, तो फौरन अल्लाह की मारिफत होती है तो फिर अल्लाह अर्हमुर्रहीमीन है। जो एक मखलूक खुदा की यह आलम है कि तड़प रही है तकलीफ में, फिर भी कातिल की फिक्र है कि उसमें जुल्म न हो, उनको आराम से रहने दो, उनको शरबत दो, उनकी रस्सी ढीली करो, फौरन मारिफत खुदा होती है अल्लाह कितना अर्हमुर्रहीमीन, अल्लाह का दिल कितना नरम है, अल्लाह कितना अफ़ो दरगुज़र करने वाला है। طرح معصوم کے ذریعے مسلسل ایک ایک واقعہ ہم دیکھیں گے. اور تامین محبت اللہ فی اللہ کی محبت میں تام تھے, حد کمال تک تھے اللہ کی محبت میں. کتنے کمال کہ ہم دیکھیں, یہی تو محبت خدا ہے کہ اللہ کی مخلوق طرف رہی ہے. میرا قاتل ہے, میرا قاتل ہے, مجھے بہت اذیت دی ہے, میں تڑپ بھی رہا ہوں, مگر ہے اللہ کی مخلوق. یہ محبت خدا ہوتی ہے تو مخلوق خدا کا بہت خیال ہوتا ہے, چاہے بری ترین کیوں مخلوق نہ ہو. جتنی مارے ہو عظمت خدا زیادہ, اتنا ان کا مخلوق کا خیال ہوتا ہے. اور مصائب کے پہاڑ پڑ جائے مگر کیوں کہ اللہ کے راہ میں ہے. مصائب کے پہاڑ ہو وہ مصائب بھی خوبصورت نظر آتے ہیں. مولا حسین کی اب مثال لے, محبت خدا کیوں, مخلصین فی توحید اللہ, اللہ کی توحید میں کامل سے مخلص سے. جب آخری وقت جا رہے, اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد, زخموں سے چور چور ہونے کے بعد, یتیموں کو بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھنے کے بعد, آخری رخصت ہو چکی ہے. ایسے میں اب سب سے رشتہ منقطع کر کے اللہ سے رشتہ قائم کرتے, سب سے خیمے کے رخصت ہونے کے بعد, ترکت الخلق طوراً فی ہواک واعتمت العیال لکی اراک, میں نے سب کچھ ترک کر دیا خدایا پروردگار, میں نے اس دنیا میں سب کچھ ترک کر دیا تیری محبت میں. میرے اولاد کی یتیمی کو میں نے گوارا کیا تیری ملاقات کے لیے. فقط قطعتونی فی حب الاربا, تیری محبت میں اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, لما ہن الفؤاد الا سواک, میرا فؤاد میرا دل تیرے سوا کہیں نہیں جھکے گا, کہیں نہیں جھکے گا. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کی جائے, بچوں کو یتیمی, سب کچھ گوارا ہے تیری ملاقات کے لیے, تیری محبت کے لیے. اس حد تک تو مصائب کچھ نہیں ہے. جتنی خدا کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی, معرفت بڑھتی جائے گی, تو دنیا کے مصائب بہت چھوٹے نظر آئیں گے. کسی کے آگے رونا دھونا نہیں, کبھی بھی مصائب میں کسی کے آگے کسی کو تنگ نہ کرنا چاہیے, بلکہ دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. لوگوں کے پاس اپنی مشکل اپنی پریشانی رونا, یہ ایک قسم کا شرک ہے, اللہ کو نہیں پسند. اللہ چاہتا ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں, نہ کہ کسی پہ بوجھ بنے, نہ کہ ان پہ ایک پاس روئے ان کے پاس روئے ان کو ستائے ان کو ستائے, بلکہ اللہ پہ توکل رکھے, اللہ پہ توکل رکھے. تو جتنی محبت اللہ سے ہو, معرفت ہو, تو کبھی بھی اپنی پریشانی لوگوں سے نہیں بیان کرے گا, کبھی لوگوں کی طرف نہیں جھکے گا, صرف ایک ہی اللہ کی طرف رجوع ہوتا چلا جائے گا. یہ معرفت خدا, محبت خدا. اتنے مصائب کے بعد یہ جملہ کہنا, شام غریبہ کی رات کتنی سخت ترین رات, سید سجاد سجدے کے عالم میں ایک ہی جملہ کہہ رہے, ایک ہی جملہ کی چکرا, الحمدللہ الذی ابلانا, پروردگارا تیرا حمد و ثنا ہے, تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امتحان کے لائق سمجھے, امتحان کے ہمیں لائق سمجھے. آپ سوچئے کتنی محبت, اتنے مصائب کہ شام غریبہ جیسی رات اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ معرفت خدا, یہ محبت میں کمپلیٹ حد کمال اور توحید میں مخلص, ان کا نتیجہ یہ ہے. تو یہ تو معصوم ہے, یہ تو عصمت کبریٰ رکھتے ہیں, امام ہے, عصمت کبریٰ رکھتے ہیں, مگر عصمت صغریٰ رکھنے والی زینب کا بھی سوچے کہ ابن زیاد کے دربار میں ہے, رسن بستا ہے, بھوکھی پیاسی ہے, بچوں کی یتیم کی بلک بلک اتنے داغ اٹھائی ہے, ابن زیاد کو کیا جواب دیتی, وہ تانا دے رہا ہے کہ ماں رئی تو اللہ جمیلا. یہ مصائب جو ہے ہمارے نزدیک جمیل ہے, خوبصورت ہے, کیونکہ اللہ کے راہ میں ہے, کیونکہ اللہ کے راہ میں, تو یہ مصائب یہ مصیبت خوبصورت ہے. یہ معرفت خدا, یہ محبت کی حد کمال, یہ توحید کا میں اخلاص. تو آپ سوچیں جو اللہ کی ایسی مخلوق ہے تو اللہ کیسا ہوگا, اس طرح اللہ کی معرفت ہوتی ہے. इंसान कितना करीब आ जाता है अल्लाह को, पहचानता है, कितनी मोहब्बत करता है। क्योंकि अगर मुसीबत आए, परेशानी, तो समझ ले सूरह हुजरात, लकाना खैर लहुम, जो मुसीबत आती है, परेशानी वगैरह, ये कानून है इस्लाम के, जितने कानून है, ये करो ये न करो, या किसी किस्म का मुसीबत तुम्हारे लिए खैर है, लकाना खैर लहुम, वो अलग बात हम नहीं समझते। जगह जगह कुरान में सूरह बकरा की 216 नंबर की आयत में, वह असा अन तक रहू शयम वह हुआ खैर लहुम, तुम एक चीज को नापसंद करते हो, नफरत करते हो, मगर तुम्हारे लिए खैर है। वह असा अन तुहिबू शयम वह हुआ शर लहुम, एक चीज को तुम पसंद करते हो मगर तुम्हारे लिए नुकसानदेह शर है। वल्लाहु यालम वअंतुम ला तअलमून, जो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, जो अल्लाह जानता है, हमारा खालिक है, वो जो जानता है हम नहीं जानते। बार बार इस सूरे में आ रहा है सूरह अलीम है, खबीर है, अलीम है, खबीर है, या अलमूना है, हर कुछ जानता है कि हमारे लिए खैर क्या है। तो ये मारिफत इमामों ने और इमाम के करीब लोग ने ऐसे हासिल की थी, खास करके अल्लाह के राह में मसाइब हो उनको गले लगाते थे, उनको गले लगाते थे। तो पता ये चला कि ये सारी खूबियां इंसान में, कभी इंसान इंसान के पास नहीं झुकता, अल्लाह के पास और रसूल और अहले बैत को वसीला करार देता है। तो इनके जरिए मारिफत खुदा। अब इबादत के सिले में छठे इमाम की हदीस, इमाम फरमाते हैं कि हमारे जरिए तुम अल्लाह को पहचानते हो, अल्लाह की मारिफत हमारे जरिए, अल्लाह की इबादत भी हमारे जरिए, यानी हमारे मॉडल से उनके जरिए में पता चलता है कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल की जाए, अल्लाह की इबादत कैसे की जाए। हमारे तमाम अइम्मा का जुमला है, 12 ही 12 का जुमला है, हम इबादत करते हैं न तो जन्नत की लालच में, न तो जहन्नम के अजाब के खौफ में, हम इबादत करते इसलिए कि अल्लाह लायक इबादत है, अल्लाह लायक इबादत है। हाँ, हम करेंगे, हम जैसे हम छोटे हैं, बहुत छोटे, इमाम के गुलाम के गुलामी में भी नहीं आई है, इमाम की कनीजी के कनीजे में तक भी नहीं पहुंचे हम। हमारे लिए अच्छी बात है कि हम जन्नत की लालच में अच्छे से अच्छे काम करें कि दर्जा बुलंद से बुलंद मिल जाए, कि हम जहन्नम के आजाब के खौफ में अमल करें, हमारे लिए अच्छी बात है। खौफ है खुदा गाफिलान के लिए अच्छी बात है, हम गाफिलान में है, हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए खौफ है खुदा बहुत अच्छी चीज है ताकि हम गुनाह से बचे। मगर अल्लाह के नजदीक जो बुलंद लोग हैं उनके लिए ये अच्छी सिफत नहीं है खौफ है खुदा, उनके लिए मोहब्बत है खुदा है, उनके लिए हर चीज इश्क के खुदा ने करते हैं, हर चीज खुशनूदी खुदा के लिए करते हैं। उनको ना जन्नत की परवाह है, ना जहन्नम का खौफ है, बस खुदा लायक इबादत है, खुदा से इतना इश्क करते हैं कि उनका मकसद हयात है मर्ज़ात इल्लाह, बस अल्लाह हमसे राजी हो, खुश हो। तो उनके पास खौफ नहीं होता, हमारे पास खौफ है खुदा होता है, वो भी खुदा डरने की चीज नहीं है, खौफ है अदालत है खुदा, अल्लाह की अदालत का खौफ, अल्लाह की नाराजगी का खौफ, अल्लाह से दूर हो जाने का खौफ। वरना अल्लाह तो मोहब्बत के लायक है और मोहब्बत करना ही करना है, खौफ इन चीजों का। क्यों क्यों हमारे मासूमीन क्यों जन्नत की लालच में करे, क्यों जहन्नम के खौफ में, क्यों इतने, वो तो वारिस से जन्नत के, वो क्यों जन्नत की लालच में करे। और फिर बड़ा पॉइंट तो ये है, इन अल्लाह ने हमें भी खल किया, जन्नत को भी अल्लाह ने खल किया, हम भी अल्लाह की मखलूक, जन्नत भी अल्लाह की मखलूक, तो हमारा मकसद मखलूक क्यों हो, मखलूक मखलूक का मकसद क्यों बनाए, मखलूक अपने से बुलंद को मकसद बनाए, अपने से सुपीरियर को बनाए, वो खुदा अल्लाहु अकबर है, वो ही अकबर है जो हमारे इमाम ने जिसको मकसद हयात दिया था खुदा की खुशनुदी, क्योंकि जन्नत के लिए क्यों हम करें, खुदा लायक इबादत है, ये तो जन्नत तो मखलूक है, तो मखलूक मखलूक के लिए इबादत नहीं करता, मखलूक खालिक के लिए इबादत करता है, हक समझ के, मारिफत हासिल करके, मोहब्बत करके, तौहीद का एतिकाद को मजबूत करके, किस मरहले में पहुंचता है, और हमारे मासूमीन की इबादत भी कैसी इबादत कि अगर मौला को पैर में अगर तीर चुभ गई है, चुभ गया है, उसको हटाने से इतना दर्द होता है कि वो हटा नहीं सकता, मगर नमाज के आलम में है तो पता ही ना चला। इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना खुदा की तरफ तवज्जो कि जंगे सिफीन के मैदान में तीरों की बारिश, मगर मौला की नमाज हो रही है, और वो भी खुशू खुशू हुजूर कल्ब के साथ। जरा फर्क नहीं आ पड़ता। सैयद सज्जाद की नमाजें देखा जाए तो साल में दो मरतबा पेशानी पे गठे होते थे, साल में दो मरतबा कटवाना पड़ता था। नमाज के आलम में अगर अजदहा आके शैतान अजदहा की सूरत में आके पूरा अंगूठा चबा जाए, इमाम को पता न चले, घर में आग लग जाए, सब चिल्लाए, इमाम को पता न चले, बच्चा कुएं में चला गिर जाए, घर वाले चिल्लाए, इमाम को पता न चले। ऐसी इबादत के बाद इतनी इबादत करते थे चौथे इमाम के, बेटा कह रहे बाबा पैरों में वड़म हो गए, पैरे सूज गए, पैर थोड़ी इबादत में कमी करो। तो कहते थे लाओ मेरी जज की किताब, अली की किताब लाओ, देखो इबादत तो वो करे, मेरी इबादत तो कुछ नहीं है। तो फिर सोचो जो सैयद सज्जाद कह रहे कि मेरी इबादत कुछ नहीं, तो अली की इबादत कैसी होगी। फिर भी गिरिया कर रहे, फिर भी रो रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे, खुदा जो तेरा हक की इबादत है वो हम पूरा नहीं कर पाते। यानी अजमत खुदा को इतना पहचान लिया कि इतनी इबादत के बावजूद कह रहे कि खुदाया तेरा हक की इबादत, इबादत का हक अदा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए गिरिया कर रहे हैं। हाकिम शाम ने जब जर्रा से पूछा कि तेरा मौला का कुछ हयात जिंदगी के बारे में बता, कहा मुख्तसर बताऊं कि तवील के, बोले मुख्तसर बता, बस रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे मेरे मौला मेहराब इबादत में जाते थे, रीशे मुबारक पकड़ के ऐसे तड़पते थे, ऐसे रोते थे, इतना रोते थे, इतना गिरिया कि जैसे जवान की मैयत पे मां गिरिया करती है, ऐसे गिरिया करते थे। क्या कहते या परवरदिगारा, सफर तवील है, सामान कलील है। अली कह रहे कि सफर बहुत तवील है, दुनिया से लेके आलम बरज़ख, बरज़ख से लेके कयामत, बहुत तवील है, सामान कलील है। इतनी इबादतें करने के बावजूद गिरिया कर रहे और कह रहे कि अल्लाह तेरा इबादत कहां कराए। और हमें एक 17 रकात नमाज का अदा करना हो, 17 रकात, और हम कितने अहले बैत के मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, कैसे हो सकता कि हमें नमाज की फिक्र नहीं कि जो इतनी नमाज अंजाम देते हैं उसके बावजूद गिरिया और अफसोस कर रहे हैं। तो हमें क्या मुंह दिखाएंगे उनको, अगर हमारी नमाज कहां अदा नहीं हो रहा है। दिन में 1440 मिनट, उसमें 17 मिनट भी हम क्या अल्लाह की इबादत अच्छी अंदाज में नहीं कर सकते। गुलांत मार के ना अव्वल वक्त का फिक्र, नमाज में सुस्त, कभी फजर की कजा कर दिया, क्या जवाब देंगे हम। नहीं नहीं, ये दिन बेहतरीन दिन है। अव्वल वक्त की सबसे ज्यादा अहमियत वो फर्स्ट क्लास नमाज है, जो अव्वल वक्त नमाज को अंजाम देते वो फर्स्ट क्लास नमाज है, उनके तरफ हमें तवज्जो देनी है। अव्वल वक्त नमाज, बस ये शिकवा रहती है इंडिया पाकिस्तान से, अभी भी कुछ कुछ जगह बाकी है कि नमाज के वक्त मातम, नमाज के वक्त मजलिस। नई जनरेशन देख रही है कि हमारे बुजुर्गों आजादारी कर रही है, मुअज्जिन हय्यालस्सलाह कह रहा है, अरे भागो नमाज के लिए, और हमारे लिए आजादारी हो रही है। खुद करबला के मैदान में, जंगे सिफिन में, तीरों की बारिश में अव्वल वक्त नमाज हो रही है, और हम कहते कि नहीं हम आजादारी पहले करेंगे, नमाज बाद में पढ़ेंगे। रात को देरी तक आजादारी की, सुबह को नमाज फजर कजा की, कितनी इमाम को अजियत पहुंचती है हमारे जरिए, कितनी अजियत पहुंचती है। ऐसी आजादारी क्या काम आने वाली है। अस्सलात उमुदुद्दीन इनको भी लत कुबिल मा सिवा इन रुद्दत रुद्दत मा सिवा, अब दीन का सुतून सुतून है, अगर नमाज कबूल तो सब अमल कबूल, नमाज रद्द तो सब अमल रद्द। तो अगर नमाज नहीं है या सुस्ती है तो ये सारी आजादारी रद्द, ये सारा मातम रद्द, ये सारी आंसू रद्द, सारी नेकियां सदका खैरा सब रद्द, सारा नमाज की कबूलियत के दारा मदार, उसको ही हम टहलते रहे। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज देरी से बिठाया गया है तो मैं मेरा पूरा टाइम लूंगी, तो शायद आपको थोड़ा मातम कम करना पड़े तो रात को कुछ ज्यादा कर लेना प्लीज, अच्छी तरह मातम करना रात को, एक एक नवा ज्यादा पढ़ लेना क्योंकि देरी से बिठाया गया है। अब अव्वल वक्त की फजीलत की एक दो बातें, कितना फवायद है अव्वल वक्त का, दुनिया कबर कयामत में सबसे ज्यादा हमें जो ख्वाब की ताबीर जो माहिर बताते हैं कि आलम बरजक में अव्वल वक्त पढ़ने वाले को क्या फवायद हासिल होता है, जो ख्वाब की ताबीर में महारत हासिल करने वाले हमें सही बताया है, उसमें से एक दो मैं बताना चाहूंगी। हमारा एक आलिम गुजरा है जिसका नाम अली मीर खलकजादा, अली मीर खलकजादा, उनका इंतकाल हुआ, बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, इतना नूर इतना नूर इतना नूर कि उसकी आंखें जम न पाई। बाप से कहा, बाबा इतना नूर किस लिए, आपको इतना नसीब हुआ है आलम बरकत। बस एक ही जुमला कहा, बेटा अव्वल वक्त नमाज, अव्वल वक्त नमाज, अव्वल। इसका सिला मुझे यहां मिल रहा है, मुझे बताया गया है कि अव्वल वक्त नमाज का सिला मुझे मिल रहा है। उसका उल्टा, एक जवान बेटा हज के लिए गया था, बाप आलिम वहां हज में मर गया, इंतकाल हुआ हज में, बाप ने बेटे को ख्वाब में देखा, आगा इस्फहानी, आगा अब्दुल्लाह इस्फहानी आलिम का नाम है, आगा अब्दुल्लाह इस्फहानी ने अपने बेटे को ख्वाब में देखा, अभी हज किया है, हज में इंतकाल हुआ, कितनी बड़ी सआदत मिली। बाप ने देखा आलम में बरजक में बेटे का बहुत बड़ा मकाम है, पूछा, बेटा कौन से अमल तुम्हें काम आया, इतना बड़ा मकाम मिला है तुझे। बाप बयान करता है, आलिम बाप, अवले वक्त नमाज, तकरार करता रहा, आवाज दूर होती चली गई, खामोश होकर फिर उसके ख्वाब से वेदा। हज कर हज नहीं, हज की सआदत नहीं कहा ना कि हज में इंसान अरफात के मैदान में पाको पाकी दौड़ जाता है, मगर कहा नहीं अव्वले वक्त मेरी नमाज। तो आलम बरजक के लिए मौत कितनी आसान कि पांचवें इमाम के पास शख्स आता है सहाबी, मौला में बहुत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला में बहुत डरता हूँ मौत से, ऐसी हदीसें सुनता हूँ तो मौत से बहुत डरता हूँ। टिश्यू जो है टिश्यू हो तो टिश्यू चाहिए। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम के पास आया कि मुझे आसान मौत चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, शुक्रिया अजील फरज। पांचवें इमाम के पास जब आया कि मुझे आसान मौत चाहिए, मैं बहुत मौत से डरता हूं, मैं क्या अमल करूं, पांचवें इमाम ने कहा मरे कुल मौत को अपना दोस्त बना ले कि मौला वो तो आखिरी वक्त ही आएगा। कहा पांच वक्त की नमाज या तीन वक्त अव्वल वक्त नमाज अदा करता है, मलिकुल मौत उनसे मानूस हो जाता है और इतना नरमी से रूह कब्ज करता है कि पता ही नहीं चलता। तो रूह कब्ज के वक्त नमाज अव्वल वक्त काम आने वाली, अव्वल वक्त का पांचवें मानो जब बयान किया तो अव्वल वक्त, जो हर वक्त अव्वल वक्त जो नमाज अंजाम देता है तो उनके ये फायदा है कि रूह उनका आसानी से कब्ज होती है। आलम बरजा की दो बातें बताई, तो इसी तरह हम देखें मजीद किस्सा कि कितना अहमियत वाली चीज है कि दस गए हुए शिराजी कि उमरा के लिए जा रहे थे, उमरा के लिए जब जा रहे थे प्लेन में सब बैठ गए, मगरिब से पहले का वक्त था, मगरिब का वक्त नहीं हुआ था तो अब उससे पहले सब प्लेन में बैठ चुके हैं, अब प्लेन परवाज करने वाला था तो कुछ प्लेन में प्रॉब्लम आ गए, तो सबको दरख्वास्त की कि अपनी नशीत में बैठे रहे, वहीं से बिल्कुल उठ खड़े ना हो। सब बैठे हुए थे, नमाज का टाइम जैसे करीब आया तो आयतुल्लाह दस्त गैबी शिराज बेचैन होना शुरू कर दिया, इतनी बेचैन जब नमाज का वक्त दाखिल हो रहा था तो एक क्रू से, क्रू के मेंबर से कहा मुझे नमाज पढ़ने दो, क्योंकि मना कर अभी अभी जहाज प्रवास करने वाला है। दोबारा बेचैन बेचैन दूसरे क्रू से मेंबर से कहा, उसने कहा नहीं इजाजत नहीं है, बैठना पड़ेगा। इतनी बेसिक उनके साथियों बयान करे जो उनके साथ उमरा के लिए जा रहे थे, क्योंकि चेहरे का रंग इतना मुतगैर होता चला गया, इतना मुतक इतना गम ज़दा हो गए थे, इतना कैसे लगता था उसकी रूह परवाह कर जाएगी, ऐसी हालत थी उनकी, इतनी बेचैनी, इतनी हालत खराब। और इतने में जो अभी तो प्लेन थोड़ा चला, नमाज का दाखिल हो चुका था, प्लेन चला और पता चला कि इंजिन में आग लगी है, इंजन में आग लगी। दोबारा सबको रुका गया, प्लेन को सबको उतारा गया, या उतरना था, उनका चेहरे का रंग बिल्कुल इतना खुशी के आसार, इतने खुशी के आसार दस्तगेरी शिराज जी उनके साथियों बयान करते कि सारा गम का आसार हट, अलामत हटके खुशी की अलामत ऐसे नमूदा हुई। और प्लेन से उतर के सबको कह रहे नमाज, अव्वले वक्त नमाज, अव्वले वक्त नमाज, ऐलान करते चले गए। सब उनके पीछे जमात की नमाज पढ़ी, सब जमात की नमाज पढ़ी, जमात की जमात खत्म हुई, जहाज तैयार हो गया, जहाज तैयार हो गया, सब सफर करके चले गए। आप सोचिए जिसकी नियत खुलूस से अव्वले वक्त, कैसे प्लेन आगे न बढ़ सकी। क्रू ने मना किया मगर अल्लाह ने कहा मैं हूं उसकी नियत को जानता हूं। जितनी खुलूस नियत होती है किसी अमल के लिए अल्लाह खुद रास्ता मुहैया करता है। आज खुद एक ही कदम अल्लाह को चाहे 10 कदम खुद आगे आता है। नमाज पढ़ एक जवान लड़का यूरोप में पढ़ने के लिए गया था, यूरोप में पढ़ने के लिए गया, वो खुद बयान कर रहा है कि मेरी बहुत अहम इम्तिहान था, बहुत अहम इम्तिहान था, अगर वो पेपर में न देता तो मेरा पूरा साल बेकार जाता। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के इम्तिहान हॉल की तरफ जा रहा था, रास्ते में जो बिल्कुल सन्नाटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई, इतना बेचैन हुआ कि अब यहां कोई नजर नहीं आ रही कि कोई मेरी मदद करे, सन्नाटा में अकेला, घबराया हुआ इमाम जमाना से राबेता कायम किया, या मौला या इमाम जमाना मैं आपको वादा देता हूं आज से मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा, मेरी मदद करो ताकि मैं इम्तिहान के हॉल में वक्त में पहुंच जाऊं। अभी तो मैंने इतनी दुआ की, एक शख्स नजर आया बोनेट को, गाड़ी के पास आया, कहा क्या माजरा है, कहा ये गाड़ी नहीं चल रही। बोनेट को उठाया, इधर हाथ लगाया, इधर हाथ लगाया और फिर कहा चलो गाड़ी को चालू कर। मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हुई, फौरन स्टार्ट हुई। उसने फिर बोनेट को बंद करके कहा याद रखना जो वादा तूने लिया है अव्वल वक्त का नमाज का वो अंजाम देना, करके गायब हो गया, कहके गायब हो गए। पता चला फौरन उनकी बात अल्लाह ने सुन ली, इमाम ने सुन ली, इमाम को पुकारा कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा। तो आप सोचे ऐसी कई बातें हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो उलमा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि क्यों अव्वल वक्त का इतना फायदा, इतना ज्यादा, क्या कौन सा फायदा है। एक तो हम जानते हैं कि नफ्स को गिजा ताजा ताजा दिया जाए नमाज का अव्वल वक्त, तो नफ्स इन सलात कहना अनिशाई वाल मुनकर, बुराई और बेहयाई से रोकती है नमाज। जैसे गरम गरम खाना, ताजा ताजा खाना खाओ तो जिस्म को बहुत, जबान को बहुत मजा आता है, इसी तरह नफ्स के लिए ताजा ताजा वक्त अव्वल वक्त नमाज दी जाए तो नफ्स को लुत्फ मिलता है, तो बुराई से बचाती है। अब सोचिए कि यहां उलमा ने एक बात बताई कि कौन है कि यकीनन अव्वल वक्त नमाज पढ़े हर रोज विदाउट फेल, कौन है। नंबर वन इमाम वक्त, हर रोज अव्वल वक्त यकीनी तौर पर नमाज अंजाम, हजरत खिजर है, हजरत इलियास है, उलमा मराज तकलीद, उलमा सालेहीन तक्वा तकद्दुस वाले लोग ये अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिनकी नमाज मकबूल के दर्जे पे होती है। और फिर हमारे जैसी नाकिस नमाज, ना हुजूर कल्ब ना खुशी ना खुशू, तो हर चीज नमाज में याद आ रही है, पूरा प्रोग्राम नमाज में बन रहा है, ऐसी हमारी नमाज बिल्कुल नाकिस नमाज। मगर क्योंकि हमने अव्वल वक्त में अंजाम दिया, तो जब इन लोगों की नमाज, इमाम की, उलमा की नमाज, सालेहीन की, जब इमाम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो आसमान की तरफ बुलंद होती है, नूरानियत से मामूर होके पलटती है, नूरानियत से मामूर होके नमाज पलटती है। तो जो हमारे जैसी नाकिस नमाजी उनके साथ मिल गई अव्वल वक्त, उनके साथ हमारी भी मिल गई, क्योंकि अल्लाह तो अल जवाद इतना सखी और हम रहमीन है, सबकी नमाज एक साथ उनके पास जा रही है। तो अगर वो सालेहीन की कबूल करके हमारे जैसे नाकिस को रद्द नहीं कर सकता, नहीं रद्द करेगा, उनके वजह से हमारी नमाज भी मकबूल के दर्जे पे पहुंच जाएंगी। तो फरमाया कि नमाज को मकबूल करने वाली अगर चीज है तो हुजूर कल्ब, अगर हुजूर कल्ब नहीं मिल सकता तो नफल नमाज पढ़ो, नफल के जरिए वाजिब नमाज को मकबूल करवाओ, वो भी नहीं हो रहा है तो अव्वल वक्त नमाज जो सालिहीन के साथ मिल जाती है तो मकबूल के दर्जे पहुंचती है। तो हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए अजादारी, हर चीज अव्वल वक्त रुक जाइए ताकि हम फौरन जाए नमाज पे जाए। तो हमारी बच्चे जो है हमारी पैरवी करेंगे, और जो बेनमाजी का क्या बताया जाए कि जो नमाज अंजाम नहीं देता। हदीस में कि कुत्ता सुबह उठता है, रसूल की हदीस, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि मैं कुत्ता हूं, नजीस हूं मगर सुअर नहीं हूं। सुअर उठता है सुबह सवेरे अल्लाह की इबादत करके शुक्र अदा करता है कि मैं सुअर तो हूं मगर बेनमाजी नहीं हूं। जानवर का चप्पा चप्पा दुनिया का अल्लाह की इबादत उठाए और मोमिन सोया है अहले बैत के मानने वाला, क्या जवाब देगा अल्लाह को। और क्यों बच्चियां मां कहे तो मुसल्ले में जाए, क्यों किसके लिए नमाज पढ़े, मां के लिए कि नमाज अल्लाह की होती है। जब तक मां ना कहे तो टीवी पे बैठे है, खाली फारिग बैठे हुए हैं, क्यों? मोहब्बत खुदा नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं, मोहब्बत अहले बैत नहीं है दिल में, समझ लेना। ये मोहब्बत होती तो इंसान तड़पता नमाज के वक्त जैसे दस गैर शिराजी तड़प रहे थे इतना। और हमें सबको पता है कि किसी के घर में पांच चीजें हो तो कोई दुआ कबूल नहीं होती, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पांच चीजें हो, पहली चीज आलत मौसीकी, अरे बच्चे मेरी बेटियां मेरी बच्चियां बच्चे आलत मौसीकी, गाना मौसीकी से बच्चे बहुत बड़ी बुला है, बहुत बड़ी बुरी बला है, दिल सख्त हो जाता है, मोहब्बत अहले बैत से इंसान दूर हो जाता है, दिल सख्त होता है, लोगों से मोहब्बत में कमी हो जाती है, बहुत बुरी बला है। अल्लाह बचाए हम सबको आलत मौसीकी से। और दूसरी चीज आलत जुआ, अगर घर में आलत जुआ है। और तीसरी चीज शराब है, चौथी चीज कुत्ता है, और पांचवी चीज कोई बेपर्दा औरत है। जो बेपर्दा औरत है कि जहां ना महरम के सामने पर्दा उसका टूट रहा है उसको परवाह भी नहीं। पांच इसमें से कुत्ता शामिल है। तो अगर कुत्ता बेनमाजी से बेहतर है तो आप सोचिए, जो कुत्ता है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो घर में अगर बेनमाजी है तो रहमत के फरिश्ते कैसे आएगा। वो कुत्ता उस सुबह से बदतर है। कुरान कह रहे वकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम, सलात को कायम करो, मुशरिकीन में से मत, मुशरिक नजीस है वो, उसे खाना पीना सब मकरूह है। तो सारी घर की बलाएं उस एक बेनमाजी की वजह से आ रही है। इसलिए घर की मासियों हो, घर के काम वाले हो, ड्राइवर हो, सबको मुसल्ले पे लगाओ अव्वल वक्त, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मासी को भी आप नहीं लगाते उनके वजह से भी उसी बचा सकते। हर कोई को नमाज की अहमियत देनी है। तो आप सोचिए शहजादी फातिमा रसूल के हवाले से 15 नुकसान बता रही है जो नमाज को खफीफ समझ रहा है, नमाज में सुस्त कर रहा है, नमाज को अहमियत नहीं दे रहा है। रसूल से पूछा था एक दिन, जा रही बस मसाई की तरफ, रसूल को एक दिन पूछा था शहजादी ने कि या रसूलिल्लाह कि अगर कोई नमाज को सुस्त समझता है तो उसके क्या हशर होगा। रसूल ने कहा 15 मुसीबत में मुबतिला होगा, 15 6 दुनिया की मुसीबत, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में, 3 कयामत में। तेजी तेजी से टंग बताऊंगी, वक्त हो गया मसाई की तरफ जाने के लिए। पहली चीज जो दुनिया की मुसीबतें, उनके दीगर अमाल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि नमाज कबूल तो सब अमल कबूल, अभी हदीस आ गए, उनके दीगर अमाल कबूल नहीं होंगे, रुक जाएंगे कबूलियत के दर्जे पे। दूसरी चीज उनकी जिंदगी में बरकत उड़ जाएगी। तीसरी चीज उनके रिस्क में बरकत उड़ जाएंगी। उनके चेहरे में जो एक मोमिन के चेहरे में अलामात है, नेक इंसान की अलामात होती है, वो अलामात हटाई जाएंगी, दूर हो जाएगी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। इसने हद तक कि छठी चीज के अगर सालेहीन उनके लिए दुआ करेंगे तो उसकी दुआ भी उनके हक में कबूल नहीं होगी। ये दुनिया की मुसीबत है। मौत के वक्त उनको जिल्लत की मौत मिलेंगी, भूखा जाएगा, प्यासा जाएगा। वो भूखा प्यासा दो लोग हैं, एक बहुत मुत्तकीन तरीन भूखा प्यासा जाएगा अल्लाह के पास, एक बदतरीन जो है वो भी भूखा प्यासा, वो खुश अंदाज में जाएगा भूखा प्यासा, क्योंकि मुत्तकी है, वो तकलीफ के जिल्लत की मौत के साथ भूखा प्यासा जाएगा। वो सिर्फ वो ही जानता है कि जो भूखा प्यासा जाए शायद मुत्तकी में था कि फासिक में था, बेनमाजी था या नमाजी को सुस्त समझ रहा था, अहमियत नहीं दे रहा था। तीन चीज कब्र में, आलम में, बरज़ख में, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र तंग की जाएगी, सख्त फरिश्ते उन पे मुसल्लत किया जाएगा, उनको मुसलसिल आज़ाब पहुंचाए। कयामत में जब उठेगा तो मुंह बल उसको खींच खींच के मलाइका मैदान में, कयामत के मैदान में ले जाएंगे, उल्टा खड़ा करके खींच के ले जाएंगे। उनका हिसाब में सख्ती होगी, खुदा उनकी रहमत की निगाहों से उठा लेगा। 15 चीजें आप सोचिए, नमाज नमाज नमाज, आखिरी लफ्ज रसूल का दुनिया से जा रहे, नमाज नमाज नमाज। हर मासूमीन ने हमारी शफात में अगर नमाज को किसी ने हल्की जाना, इतनी बातें हैं कि इंसान कितनी बचाए। बस आज हम मासूमी से हद करें, नमाज के अव्वल अपना मातम होगा ना ज्यादा नहीं, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जितना मातम करे, पूरी रात मातम करे, बहुत अच्छी इबादत, मगर दरमियान में नमाज का वक्त आया तो ना नमाज को अंजाम देना है। और फिर आज हम उम्मे फरवा को कुर्सा देने जमा हुए हैं। हाय उम्मे फरवा, जवानी में बेवा हुई, एक ही बेटा कासिम 2.5 साल का था जब इमाम हसन की शहादत के वक्त, 2.5 साल का था सिर्फ। इतनी बाअजमत औरत थी, इतनी बाअजमत कि इमाम हसन कासिम को सीने पे लिटाए हुए प्यार कर रहे हैं और उम्मे फरवा से वसीयतें हो रही है। बस अजादारों, जब औनो मोहम्मद की लाशें आ गई, उम्मे फरवा की अजीब बेचैनी थी, कहा बेटा कासिम, औनो मोहम्मद की लाशें आ गई, मां तो चाहती थी कि मैं शहजादी मुझे पहले पूछा दे, पहले तू कुर्बान हो जाए, मगर मुझे शहजादी को पुरसा देना पड़ा। बेटा कब जाओगे मैदान में? कहा मादेरी गिरामी में क्या करूं, चचा इजाजत नहीं देता। ये सुनना था कि उम्मे फरवा इतनी बेचैन हो गई, उम्मे फरवा को कुछ याद आया, इस बेचैनी में कुछ याद आया। हाँ कासिम, जब तेरे बाबा दुनिया से रुखसत होते थे ना, तो वसीयत की थी मुझे, अगर कासिम पे सख्त वक्त आ जाए तो बाजू पे मैं तावीज बांधता हूं, इस तावीज को खोल के पढ़ना। अरे कासिम बेटा, इससे क्या सख्त वक्त हो सकता है कि तुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं मिलती, अब हम ये तावीज खोलेंगे। तावीज की तहरीर पढ़ा, भाई से भाई कह रहा था कि भैया बहुत तमन्ना थी कि मैं आपके नुसरत में जान कुर्बान करता, मगर मोहलत नहीं मिली, मौत ने मोहलत नहीं दिया, मगर हाय मेरा बेटा कासिम, मेरे तरफ से हदिया है कबूल करना। ये पड़ा कासिम के चेहरे पे खुशी के लहरें दौड़ाई, बहुत कासिम इतना खुश खुश तहरीर लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आया। इमाम हैरान हो गए, कासिम इतना खुश क्यों है? अभी कासिम को जवाब दे के इमाम की निगाह तहरीर पे पड़ी, अरे भाई की तहरीर नजर आई, आंखों में से आंसू जारी हो गए, अरे हसन मुस्तफा याद आ गए, तहरीर को चुमा, अरे पढ़ा, फौरन इजाजत दे दी, कासिम जाइए। मगर क्या तैयार किया, सफेद कुर्ता पहनाया हसन मुस्तफा का, अमामा पहनाया, गोया ऐसा नजर आ रहे थे कि इमाम हुसैन कासिम को कफन पहना रहे हैं, गोया कफन पहना रहे हैं। हाय अजादारो, या कासिम को इमाम ने, जईफ चचा ने जवान नौजवान बेटे को सवार करवाया। अजादारो, उलमा कहते हैं चार शहीद है ना बहुत मजलूम है, चार शहीद बहुत मजलूम है। एक तो जनाब अली अजहर, इतने कमसीन कि अपने पैरों पे चल के नहीं जा सका मैदान में। दूसरे आउन और मोहम्मद और कासिम, उनके कद इतने छोटे थे, इतने छोटे कि गोरों के रकाब पे उनका पैर न रह सका। اتنے مظلوم تھے، بس قاسم اجازت لے کے اب سوار ہو رہے. امام نے سوار کروایا قاسم کو اور ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے تاکہ قاسم کی جنگ کو دیکھوں. شہزادی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، حسین کا چہرہ دیکھتی چلی جاؤں گی، اگر قاسم پہ کیا گزر رہی ہے حسین کے چہرے سے مجھے پتا چل جائے گا. ام فروہ مصلی پہ بیٹھ گئی، زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اگر میرے ماجائے پہ کچھ ہوگا تو مجھے پتا چل جائے گا زینب کے چہرے سے. ہائے عزادارو، قاسم کی جنگ جاری ہے، وہاں دشمن نے کتنے کو واسیلے جہنم کیا. وہاں اعلان ہوا کہ تم ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ بنو ہاشم کا بچہ ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، ارے چاروں طرف سے ان کو گھیر لو. ارے اشیاء نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزہ، کہیں سے پتھر. ہائے عزادارو، قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی چچا. وہاں امام حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے سے گری، ام فروہ سدے سدے میں گری. ہائے عزادارو، جب امام حسین اس شان سے چلے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، بیچ میں قاسم جارت ناہیہ امام زمانہ سلام کرتے، سلام و اس شہید پہ جن کی پتنیاں دائیں طرف کی بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پتنیاں دائیں طرف آ گئی. ہائے عزادارو، امام جب پہنچے میدان کربلا میں قاسم نظر نہیں آتا، کہ روایت بتاتی کہ قاسم جب گھوڑے پہ گرے تو ان کا قد چھوٹا تھا. شیخ مفید بیان کرتا ہے کہ قد چھوٹا تھا، جب زمین پہ جسم گرا تو ایک پیر رکاب میں، گھوڑے کے رکاب میں الٹ گیا. اگر ابھی آپ سوچے گھوڑا دوڑ رہا ہے، قاسم کا جسم زمین پہ ہے، ایک پیر رکاب میں الٹ گیا ہے، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے دوڑنے لگے. اگر قاسم کا جسم، امام تراش کر رہے جسم نظر نہیں آ رہا، ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، آواز بلند کی قاسم آواز دو، جسم نظر نہیں آ رہا، آواز نہیں آئی. عجیب جملہ روایت میں مل رہا، کہا ارے امام زمانہ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں قاسم بیٹا، ارے میرا یتیم بیٹا بھتیجا، آواز دو. جب یہ جملہ کہنے کا تھا کہ ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور گوشت کے ٹکڑے تڑپ رہے تھے. ہائے عزادارو، اب امام نے کیا کیا؟ ارے اللہ کسی بوڑھے چچا کو یہ منظر بھتیجے کا نہ دکھائے، ارے یتیم بھتیجا. ہائے عزادارو، امام حسین نے اپنی ابا اتاری، زمین پہ بچھائی، گوشت کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں. ارے پورے میدان میں میرا ضعیف امام گھوم رہا ہے، کہیں ٹکڑا میرے فرات میں مل رہا ہے، کہیں ٹکڑا گنجے شہیدہ میں، پورے ٹکڑے جمع کیے میرے مولا، جمع کر کے گٹھری بنائی، ارے پشت پہ رکھا. وہاں ام فروہ بے چین زینب کے دامن کو تھاما، ارے کیوں دیر ہوئی، ارے میرا بیٹے کا کیوں ابھی تک نہیں آیا، ارے دیر کیوں ہو رہی ہے. اتنے میں امام حسین نمودار ہوئے، ارے گٹری شانے پہ ہے، گٹری کو رکھا. ام فروہ کو سمجھ میں نہیں آتا میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے، ارے گٹری، زینب نے گٹری کھولا، ارے گوشت کے ٹکڑے نظر آئے. ام فروہ کے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. زینب نے ہاتھ تھام کے قاسم کے ٹکڑوں کے پاس بٹھایا، بٹھانا تھا. عجیب بات، ایک ایک ٹکڑا کو اٹھا رہی ہے، ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو، آنکھیں کو قریب لے جا رہی ہے، بوسا دے کے رکھتی ہے، کہتی یہ نہیں یہ نہیں، پھر دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے، آنکھوں کے قریب لے جاتی ہے، کہتی یہ نہیں. زینب نے پوچھا، ارے تمہیں فروا تو کیا ڈھونڈ رہی ہے، کس کی تلاش
سے کہ ارے قاسم کے رخسار قاسم کے رخسار کو بوسا دینا ہے. جو دنیا میں پریشان ہے مصیبت زدہ ہے پروردگار ان کو اس مصیبت سے نجات عطا کر, ان کو بیماری سے شفا عطا کر, ملک پاکستان کو اپنا امان قائم کر دے, ہماری آزاداری سکون سے ہو, مدد کر پروردگار. آئے آزاداروں کی جو دلی مراد ہے پوری کر دے. آئے امام زمانہ حضور میں تاجی فرما ماتم حسین.